भी तुम्हारा शौहर बनना चाहे तो तुम्हारा हिस्सा उसकी जिंदगी में अहम होना चाहिए। अपने काम से भी ज्यादा तुम्हें तवज्जो दे। पहले तुम,
मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं अपने चचाजाद भाई से शादी कर लूं तो आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अब जबकि मैं उस काम को हल्का करने की कोशिश कर रही हूं, तो आप इस काम को इतना बड़ा करके क्यों दिखा रहे हैं?
क्या मैं तुम्हारे काम में मुदाखलत करता हूं जो तुम मेरे काम में मुदाखलत कर रही हो? मेरे सामने मुश्किलात हैं और मेरा भतीजा जो मेरे बेटे जैसा है मुझे दावत दे रहा है काम के लिए, मुझे भी कबूल करना चाहिए।
और कितने पैसे होते हैं इसके?
तकरीबन 20 करोड़।
और आप कितने लोगों के वकील हैं?
सबके 120 लोगों के।
इस खास केस में मैं खुद जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
कैसे हैं जनाब आप?
शुक्रिया।
मैं जनरल आरएश पेदराम हूँ, 132 नंबर थाने का इंचार्ज हूँ।
इलाम को कुछ हुआ ही क्या?
नहीं नहीं, आपके खिलाफ वारंट पेपर लाया हूँ।
कारखाना जब तक चल रहा था एक मुश्किल थी, लेकिन जब बंद हो गया तो हजार मुश्किल है।
सख्त है, बहुत सख्त है। जब मजदूरों की बात आ जाए, वकील, अदालत, तो और मसला भी पेचीदा हो जाता है।
अबू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ बाबा का कर्ज अदा करने आए हैं ताकि हमें खरीद सकें, लेकिन इस काम से आपको कोई फायदा नहीं पहुँचेगा और मेरे ताल्लुक खराब नहीं कर सकते।
देखो इलाम, मैं
जनाब गलत सोच रहे हैं।
क्या कह रही हो? मैं अपनी जिंदगी, पढ़ाई और हर चीज में चचा जान का मखरूज हूँ। अब जब उनको जरूरत है और मैं कर सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँ उनकी मदद? मेरा उन पर कोई एहसान नहीं होगा, मैं भी उनका एहसान मंद हूँ, याद रखना।
बाबा जान, फूफी जान के घर दावत है इस हफ्ते या अगले हफ्ते? बाबा बाबा। बाबा जान
काफी देर से मुझे पुकार रही थी क्या?
नहीं, ये क्या है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हैं? कारखाने के कागजात हैं?
कुछ नहीं, कंपनियों के हिसाब किताब देख रहा हूँ।
कुछ कंपनियों के? कोई नया काम करने लगे हैं?
हुमन की तजवीज थी, उसने मुझसे कहा था कि उसकी कंपनियों के माली डिपार्टमेंट में संभाल लूं।
आप हुमन के लिए काम कर रहे हैं?
मेरी नजर में तो हाँ, लेकिन वो कहता है कि आप मुझे मशवरा दे रहे हैं।
इतने काम हैं, इतने किस्म के अनावीन, कितनी कंपनियां हैं, किसकी हैं?
हुमन की हैं। बाज तो उसी के नाम है और बाज में शेयर का मालिक है। बहुत समझदार है, काफी तेज और होशियार लगता है।
जी होना भी चाहिए, होशियार और तेज चाचा का बेटा। आते ही पता नहीं कैसे इतनी कंपनियों का मालिक बन गया।
कंपनी नाम करने में कोई टाइम थोड़ी लगता है, कल ही मैं 10 कंपनी अपने नाम कर लूं।
नहीं बाबा जान, कागजी कंपनियां जिनका वजूद ना हो तो किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकती, इसी तरह के काम आ सकता है।
सही कहा, इस तरह की कंपनियां टैक्स देने से भागने के लिए ये सब काम करती हैं।
मतलब कानून के खिलाफ वर्जी?
नहीं, इसे खिलाफ वर्जी नहीं कहते। नहीं, बाज जगहों पर पार्टनर बढ़ाने से टैक्स कम हो जाता है, सब ऐसे ही काम करते हैं।
कागजी कंपनियां बढ़ाने से? लेकिन मेरे लिए अजीब बात यह है कि अभी पीएचडी करके बैरून मुल्क से जो लोग आए हैं, कैसे इतने तरीके और काम उनको मालूम हो गए हैं कि मुख्तलिफ कंपनियां अपने लिए खोल ली हैं और बड़ी आसानी से चेक भी देने लगे हैं।
तुम इस वक्त भी उस बात से नाराज हो कि उसने मेरी जमानत ली है? इलहम ठीक हो जाएगा, खुदा पर भरोसा रखो। कारखाने की कुछ चीजें बेच दूंगा और उसका 20 करोड़ लौटा दूंगा। तुम इतना परेशान ना हो।
परेशान? मैंने बस कुछ सवाल पूछे हैं, बस।
मैं जानता हूँ हुमन दिल का अच्छा है, बिलाखिर ये लड़का इसी खानदान से तो है।
इसीलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, प्लीज ज्यादा ख्याल रखें।
वालेकुम सलाम।
माफ कीजिएगा, पिया साहब का कमरा किस तरफ है?
आप कौन?
उनकी चचाजाद बेटी।
क्या काम है आपको?
उन्हीं से मुझे काम है।
इंजीनियर साहब, कोई लेडी पुलिस बाहर है।
लेडीज पुलिस? क्यों, वॉचमैन ने मुझे फोन क्यों नहीं किया?
नहीं मालूम।
मेरे चचा की लड़की है।
आप कहे तो कह दूं कि आप नहीं है।
नहीं, इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें अंदर लाओ।
जी जी।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
पुया साहब तशरीफ रखते हैं।
जी क्या है?
मैं उनकी कजन हूँ।
जी अच्छा, तशरीफ लाइए।
शुक्रिया।
तशरीफ लाइए। इंजीनियर साहब, ये रही आपकी कजन।
वाह वाह, इधर कैसे?
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कोई टेलीफोन ना देना इधर।
अच्छा
कैसे बेखबर?
हैरान हो गए?
तो मुझे हैरान करने आई हो, इसलिए इस एड्रेस पे आई हो?
ये तो काम का एड्रेस है, यहाँ कुछ देखने आई हूँ।
देखने आई हो पुलिस बनकर?
अपने बाबा की सरपरस्ती करने आई हूँ, ये देखने के वो कहाँ काम करते हैं। कोई मुश्किल है?
नहीं कोई मुश्किल नहीं। चाय पियोगे या कॉफी?
कुछ नहीं।
ड्यूटी के वक्त कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? दो कॉफी भिजवा दो भाई।
अच्छा,
अपने काम के बारे में मुझे ठीक से कुछ बताओगे नहीं? बाबा तुम्हारी जहानत और होशियारी की बहुत तारीफ करते हैं।
मैं करेंसी काम करता हूँ, बेचता हूँ, खरीदता हूँ, चेक का काम भी।
हाँ, मतलब करेंसी का ऑफिस।
अलबत्ता मेरे काम के मुख्तसर हिस्से का ताल्लुक दाखिली करेंसी से है, ज्यादातर मैं बिरूने मुल्क से रابطے में हूँ।
पाबंदों ने हाथ नहीं बांधे हैं?
वो तो है, शायद मेरे चाचा ने इसीलिए मेरी तारीफ की है।
मैं भी शाबाशी देती हूँ।
इस वक्त इन पाबंदियों की वजह से पैसे ट्रांसफर करने में मुश्किल खड़ी हो रही है, लेकिन मैं पर्सनल ताल्लुकात से ये काम तकरीबन अच्छी तरह से अंजाम दे सकता हूँ।
सैकड़ों कागजी कंपनियां बनाकर सबको बेवकूफ बनाकर।
देखो इल्हाम, अगर सही जाविये से इस मौजू की तरफ देखोगी तो ये काम एक तरह से मुल्की खिदमत है। मैंने भी एक आगे बढ़ाया है काम को, चल सके हो सके चल चले
चल सके
चले।
काम करने वाले उधर हैं?
उधर
वो सामने वाला ऑफिस भी आपका है ना?
हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। हाँ, लेकिन ज्यादातर काम मैं खुद अंजाम देता हूँ। अरे वहाँ ऑपरेटर वगैरह का काम होते हैं।
मुझे दिखाना नहीं चाहेंगे?
हाँ, क्यों नहीं, चलो। देखो यही सब कुछ है, काम को फॉलो करना, अपॉइंटमेंट, इंतजामी काम, कहा कि असल काम मैं खुद ही करता हूँ। और जहाँ भी देखना हो बताओ।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
ये कमरा भी इसी की तरह एक कमरा है, मेरे मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे जो साथी काम करते हैं उन पर नजर रखता हूँ मैं।
और ये क्या है?
हाँ, ये जब भी कहा है इसकी?
इंजीनियर साहब आप ही के पास है।
हाँ सही कह रही है, घर पर मैं भूल गया हूँ, कोई खास चीज नहीं है इसमें, आप जा सकते हैं।
हमेशा बंद कमरे इंसान को ज्यादा मुतवज्जे करते हैं।
तुम्हारे साथ जितना भी कुछ किया जाए तुम पुलिस ही रहोगी। ये बस एक कमरा बंद है जिसमें कुछ कार कबाड़ रखे हुए हैं, अगर देखना चाहती हो तो कल चाबी ले आऊंगा। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है।
चलो अच्छा हुआ मैं इस वक्त तुम्हारी रिश्तेदार बनकर आई हूँ, वरना कोई भी कमरा पुलिस और कानून के लिए बंद नहीं रह सकता।
एजारी।
जी सर।
फलाई साहब चलिए बाहर, दरवाजा खोलो।
जी सर।
ठीक है, खुदा हाफिज, आइए। तशरीफ रखिए, आइए। बहरामी फाइल कंप्लीट करने के लिए हादसे की जगह फौरन पहुंचो।
जी सर।
शुक्रिया।
माफ कीजिएगा जनाब, उसकी तबीयत कैसी है?
मुझे अफसोस है।
उफ, उफ।
उसके घर वालों की तलाश जारी है। अफसोस यह है कि उसके पास किसी किस्म का शनाख्ती कार्ड नहीं था। یہاں آپ نے لکھا ہے کہ کن کی جانب جا رہے تھے، آپ کا گھر وہاں ہے؟ جناب، کیا ممکن ہے میرے سوال کا جواب دیں؟
نہیں، بس ٹھہرنے کی عارضی جگہ ہے، کچھ کاغذات وہاں رکھے تھے، میں وہاں جا رہا تھا وہی سب لینے کے لیے۔
مطلب اتنے ضروری تھے کہ آدھی رات کو آپ کو جانا پڑ گیا؟
جی، میرا ذہن بہت پریشان تھا، سب سمیٹنے کی ضرورت تھی، سب چیک کرنے کی ضرورت تھی۔ معاف کیجیے گا، اس کیس سے اس کا کوئی تعلق ہے؟
کیوں، اپنے بیوی بچوں کو اسی دن اطلاع نہیں دی؟
مجھے نہیں لگتا تھا ایسا کچھ ہوگا، انہیں پریشان کر دیتا، ایک ہی رات کی تو بات تھی۔
اس بات سے کیا پریشان نہ ہوتی کہ آپ ایک رات گھر پر نہیں آئے؟
نہیں، میرے کام میں ایسا ہوتا ہے۔
کوئی گواہ اس رات ہائی وے پر نہیں تھا، بریک کے نشان بھی نہیں ہے، اچانک دیکھا، دھیان کہاں تھا آپ کا؟
وہ خود ہی اچانک سڑک پر کود پڑا۔
اتنی رات کو کیسے ممکن ہے؟
یقین کیجیے، خدا کی قسم اچانک کود پڑا۔
کوئی ڈرگس تو نہیں لیا تھا آپ نے؟
نہیں، اسی دن آپ کے ساتھیوں نے ہر طرح کا ٹیسٹ لے لیا تھا۔
کوئی غلطی بھی آپ کے ریکارڈ میں نہیں ہے، نہ ایکسیڈنٹ اور نہ فائن؟
میرے کاغذات کمپلیٹ ہیں، لائسنس ہے، انشورنس ہے، سب کچھ ہے میرے پاس۔
جی، دیکھ رہا ہوں۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟
میری اپنی فیکٹری ہے، انڈسٹریل مشینیں بناتا ہوں۔ کیوں اسے زندہ نہیں رکھ سکے؟
کوئی نہیں چاہتا تھا وہ بیچارہ مر جائے، اپنی پوری کوشش کی سب نے۔ یہ فارم پر کر دیں، انشورنس کے ہیں، ٹائم لگ سکتا ہے، یہ بھی بھرنا ہوگا۔ یہ پین، یہ آپ کا انشورنس نمبر،
پڑھ لیا؟ مانتی ہو تو پھر پڑوسیوں کے اعتراض کو تم مانتی ہو؟ مانتی ہو کہ تمہارے بار بار کے آنے جانے سے پڑوسیوں کو پریشانی ہوتی ہے؟
قبول ہے،
تو مانتی ہو؟
چھوڑ دوں گی،
اور رہ جاتا ہے سرکاری جرم۔
کیسا سرکاری جرم؟
فائل نکالنا۔
میں فائل نہیں نکالتی۔
تو مانتی ہو؟
کیونکہ میں فالگیر نہیں ہوں۔
ہم تحقیق کر چکے ہیں،
کہا تو میں فال نہیں نکالتی۔
تو پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟
میں ایڈوائزر ہوں۔
سرٹیفکیٹ اور اجازت نامہ ہے؟
آپ کی طرح نہیں۔ اگر آپ کے گھر کوئی دوست ایڈوائز لینے آئے تو کیا پہلے اس سے آپ ثبوت مانگتی ہیں؟
مطلب جو بھی تمہارے گھر آتے تھے وہ سب تمہارے دوست تھے؟
جی، تو یہ بھی جرم ہے کہ کسی کے دوست زیادہ ہوں۔
تو ایڈوائز دینے میں تم ماہر ہو۔
میرا کام تھانے کے لا ڈپارٹمنٹ سے ہے، مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کسی سے ایڈوائز کی خواہش کی ہو۔
ایڈوائز اس تھانے کا حصہ ہے محترمہ۔
شاید تم ایچ ای پولیس ہو، لیکن ایچ ای ایڈوائزر نہیں ہو، تجربہ کار نہیں ہو۔ تجربہ کم ہے، شادی شدہ ہو
محترمہ؟
معاف کیجیے گا انسپیکٹر صاحب، میں ایک فون کر سکتا ہوں؟
جی، کر لیجیے، فون کھلا ہے، لینا۔
معاف کیجیے گا، اپنے موبائل سے کر سکتا ہوں؟
نہیں، فی الحال آپ کو پرسنل موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔
اصل میں جس نمبر پر فون کرنا ہے مجھے یاد نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، کہہ دیتا ہوں آپ کا موبائل لیں، لیکن اسی نمبر سے فون کرنا پڑے گا۔
پرائیویٹ ہے انسپیکٹر صاحب،
بھول جائیے۔
آپ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ قصاص، پھانسی؟
آرام سے رہیے جناب، کیا ہو گیا اچانک؟
یقین کیجیے، ایکسیڈنٹ تھا، خدا کی قسم ایکسیڈنٹ تھا، خدا کی قسم، وہ خود ہی میری گاڑی کے سامنے۔
پریشان نہ ہو، آرام سے بیٹھے۔
आप मरकजी अदालत जाइए।
मैंने सिर्फ एड्रेस पूछा है।
हाँ ठीक है, वहाँ जाइए, एड्रेस ये आप पास जाइए।
अच्छा ठीक है।
जना माफ कीजिएगा, मेरे शोर को कल रात इसी थाने में लाए थे, इस वक्त कहाँ जाऊँ?
किस लिए लाए थे, किस क्या नाम?
कल रात हाईवे पर उनका एक्सीडेंट हुआ था।
यानी एक्सीडेंट जो मर गया था आदमी?
नहीं, गलत समझ रहे हैं। कैसी जान?
उनका नाम हाशिम फलाही है, आप मुतमईन हैं?
जी, इस वक्त वो हिरासत में।
किसकी जान नहीं गई है?
अरे मतलब वो जिंदा है, कोई दूसरा मरा है, वो हिरासत में है।
खुदा मेरी जान ले।
सुसर परेशान मत होइए, मैं अभी आपके लिए पानी के लिए कहता हूँ, बैठे तशरीफ रखिए।
क्या हुआ है कुदरत?
ये फलाही साहब के घर से आए हैं जिन्होंने कल किसी की जान ले ली थी।
आप चलिए, सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ चलती हूं।
किसी को मार दिया है? परेशान हो मोहतरमा,
आइए चलिए
आइए।
इंस्पेक्टर साहबा कैदखाने में हैं।
आपने मोबाइल उसके मालिक तक पहुंचा दिया?
आज आज ले जाऊंगा,
आज ही।
जी जरूर,
आप चलें प्लीज। तशरीफ लाए, आए। इंस्पेक्टर साहब, फलाही साहब के घर वाले हैं।
हाशिम
आइए प्लीज।
पापा जान।
हाशिम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम कल तुर्की जाने वाले थे।
अस्सलाम वालेकुम।
सुबह खैर।
सुबह खैर।
हाशिम पापा जान, क्या हुआ?
क्या मामला? क्या हाशिम
तुम एक्सीडेंट में किसी की मौत हो गई है?
हालांकि आज रात की फ्लाइट थी।
तो तुम घर क्यों नहीं आए?
तो अब क्या होगा?
असल में मुझे कुछ चीजों पर शक है।
एक अटैची बेंगलोर में भूल गया था, उसी को लेने गया था कि रास्ते में ऐसा हुआ।
अगर ना जाते तो क्या होता?
हाशिम तूने क्या किया? अभी तक तो कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था।
आओ बैठो,
एक मिनट बाहर तशरीफ लाए।
क्या कर दिया तुमने? क्या क्या दिया है अबू?
इंस्पेक्टर साहबा, ये आदमी कोई चीज हमसे छुपा रहा है।
मतलब कत्ल था?
नहीं, लेकिन कोई बात है जो हम नहीं जानते, साफ लग रहा है।
मैं इस सिलसिले में कुछ कर सकती हूँ?
जी, अब जब इनके घर वाले आ गए हैं तो अच्छा होगा एक मिनट इनसे बात कर लें।
जरूर, इत्तेफाक से मैं भी महसूस कर रही थी।
सुबह
लड़की की हालत अजीब सी थी, हाजिर खिदमत हूँ मैं।
जी जी जाइए।
क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो?
इस खातून के हाथों?
कौन?
खुदा के देखें।
चलो देखते हैं,
आइए।
अस्सलाम वालेकुम।
अलैकुम सलाम।
मैं एडवाइजर डिपार्टमेंट के इंचार्ज हूँ, इंस्पेक्टर इल्हाम पुया।
कौन सा काम तुम्हें ज्यादा पसंद है, एडवाइस देना या पुलिस बनना?
हम साइकोलॉजिस्ट पुलिस हैं।
मैं तुम्हारा हाथ देख सकती हूँ?
जी।
अपना हाथ मुझे दो, डरो नहीं। बाया हाथ। तेज, होशियार, जहीन, मेहनती और जंगजू। तन्हा हो लेकिन चाहने वाले बहुत हैं।
काशिफ साहिबा, आपका सरकारी जुर्म वाज़े है, आपका काम, लेकिन चूंकि आपका रिकॉर्ड अच्छा है लिहाजा कोई सख्त सजा नहीं दी जाएगी। मैं एक खत इस केस में बढ़ा सकती हूँ जज साहब को देने के लिए, लेकिन सिर्फ इस शर्त के साथ कि आप आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगी।
कैसा काम? मैंने कौन सा काम किया है?
फालगिरी, लोगों को झूठ बेचती हो।
मैं किसी को कुछ नहीं बेचती। आमतौर से लोगों को पसंद है कि मैं कुछ चीज़ें उन्हें बताऊं जो उन्हें पसंद है। मैं भी आपकी तरह एक तरह की एडवाइज़र हूँ।
बहुत खूब, एडवाइज़र। और
जिस वक्त तुम किसी नाउमीद की आखिर उम्मीद बनो तो एक तरह से उनकी एडवाइज़र हो। मुझ में और आप में बस एक फ़र्क है, आप लोग उन पर मेहनत करती हैं ताकि दुनिया के साथ मुताबिकत पैदा करें, लेकिन मैं उनके लिए ऐसी दुनिया बनाती हूँ ताकि दुनिया उनके मुताबिक हो।
अच्छा तबसरा है, मुझे आप पढ़ी लिखी लगती हैं।
अलिफ बे थे की हद तक।
जानती हो जो झूठे ख्वाब दूसरों को दिखाती हो कितना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, उनके अकीदे के लिए, उनके ख्यालात, हर चीज और हर शख्स पर उन्हें शक होने लगता है।
अच्छा, मैंने जो अभी आपकी हथेली देख ली और कुछ बातें आपको बता दी, تو آپ کو ہر چیز اور کسی سے بیزار کر دیا. جو باتیں میں نے بتائی ہیں کون سی جھوٹ تھی؟
آپ نے بتایا ہی کیا ہے؟ بہولا آپ کے ایسے الفاظ ذکر کیے ہیں جو سب سننا پسند کرتے ہیں. سب چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں ہوشیار، ذہین اور ذمہ دار کہیں.
مستقبل وہ نہیں ہے جو وہاں کھڑا ہے اور میرا انتظار کر رہا ہے. مستقبل وہ ہے جو ہم کو اپنی طرف بلا رہا ہے. مجھ میں اور آپ میں یہی فرق ہے کہ آپ پہلے والا مستقبل انہیں دکھانا چاہتی ہیں، لیکن میں دوسرا مستقبل. پہلے مستقبل میں کوئی جان نہیں ہے، لیکن دوسرے مستقبل میں بہت زیادہ جان ہے. کہہ سکتی ہوں سب کو انرجی دیتا ہے.
معاف کیجیے گا، مجھے کچھ سوالات کرنا تھے.
قانونی سوالات؟
جی،
ہمارے ساتھی وہاں ہے، آپ کی ہیلپ کریں گے.
انسپیکٹر پویا صاحبہ؟
جی میں ہوں، فرمائیں.
معاف کیجیے گا، کیا میں ایک مشورہ آپ سے لے سکتی ہوں؟
ضرور، بس دو منٹ رکیں. کاشف صاحبہ، اب اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کو کرمنل ڈپارٹمنٹ میں جانا ہوگا.
شکریہ جو آپ نے مجھے وقت دیا.
کوئی بات نہیں،
خدا حافظ.
خدا حافظ.
حاملہ ہو؟
آگے بڑھیے محترمہ،
تشریف لائیں. حاضر خدمت ہوں.
معاف کیجیے گا، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی کسی کو گاڑی سے ٹکر مار دے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟
اور بھی کچھ بتائیں، چونکہ ممکن ہے اس ایکسیڈنٹ میں کسی کا جسمانی نقصان ہو یا موت ہو جائے.
موت نہیں، مجھے نہیں لگتا.
آپ کا نام؟
ہنگامہ، ہنگامہ کرمانی.
یہ لیں، بہت پریشان ہے آپ. کرمانی صاحبہ، صحیح سے بتائیے کہ بات کیا ہے تو شاید میں آپ کی مدد کر سکوں.
میں نے کل ایکسیڈنٹ دیکھا ہے.
کب؟
کل رات کین ہائی وے پر.
جی جی، وہی ایکسیڈنٹ جس میں وہ شخص مر گیا.
انتقال؟
جی
نہیں، وہ فلاحی صاحب اس وقت کہاں؟
فلاحی صاحب یہیں ہیں، ٹھیک ہیں. آپ اس وقت کہاں تھی کہ آپ نے وہ ایکسیڈنٹ دیکھ لیا؟
میں فلاحی صاحب کے ساتھ تھی.
مطلب
میں ان کی بیوی ہوں، میں ہاشم فلاحی کی بیوی ہوں.
ابھی کسی کا پتا نہیں چلا ان کے رشتے داروں کا.
افسوس کہ نہیں.
خدا مجھے موت دے، اس کے گھر والے بھی بے خبر ہیں. یہ کیسی مصیبت آ گئی ہے.
ہاشم،
ہم نے کیا غلطی کی تھی جو اس طرح سزا بھگتنی پڑ رہی ہے؟
معاف کیجیے گا انسپکٹر صاحب، ہم گھر کے کاغذات بھی لائے ہیں.
ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹا، دے دے.
جی اچھا کیا، لیکن اس کی ضرورت نہیں ابھی.
لیکن کیوں؟ ایکسیڈنٹ تھا؟
جی غالباً.
غالباً مطلب شک ہے کیا؟
مزید تحقیقات کی ضرورت ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگ. مطلب یہ کہ آپ کے شوہر کو ابھی یہاں رہنا پڑے گا جب تک تحقیقات پوری نہیں ہو جاتی.
یعنی ابو کو یہیں رکھیں گے؟
کیا مطلب یہیں رکھیں گے؟
انسپیکٹر صاحب، میں نے خود پولیس کو فون کیا تھا، کوئی بھی وہاں نہیں تھا، میں بھاگ بھی سکتا تھا.
میں نے کچھ کہا ہے فلاحی صاحب؟ بہرحال تحقیقات مکمل ہونی چاہیے.
کیسی تحقیقات مکمل کرنی؟
آرام سے بیٹھیے فلاحی صاحب.
انسپیکٹر صاحب، آپ کو کس چیز پر شک ہے؟
آپ کس بات سے اتنے پریشان ہیں؟
ارے میری زندگی چوپٹ ہو رہی ہے.
جناب کسی کی زندگی ختم بھی ہو چکی ہے، آپ تو پھر بھی ٹھیک ہیں. अगर कोई गवाह मिल जाता तो इतनी मुश्किल पेश ना आती।
आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैंने खास तौर से किसी को टक्कर मारी है? आप समझ रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ ना?
मैंने कोई ऐसी बात नहीं की।
माफ कीजिएगा, मैं दखल दे रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, वहाँ कोई गवाह रहा ही नहीं होगा क्या आखिर गवाही दे।
मोहतरमा, इस हादसे में किसी की जान गई है।
मेरे खुदा, मुझ पे रहम कर।
माफ कीजिए, अगर आप इजाजत दें तो हमें अपने काम भी देखने हैं, मुलाकात का टाइम हो चुका। मैं आपसे चाहता हूँ यहाँ से चली जाए।
कहाँ जाऊँ? अपने शोहर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी।
फलाही साहिबा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ।
नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी।
तुम मदद कर सकती हो अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ?
जाओ,
हाशिम,
चली जाओ।
आप ये कागजात कबूल कर लीजिए, जब कहिएगा हाशिम यहाँ आ जाएंगे।
फलाही साहिबा, आप जहमत कीजिए, बाहर तशरीफ रखिए, बाद में आपको बुला लूंगा, यहीं रहिए, ठीक है?
जाओ, ठीक हो जाएगा।
वो तो ठीक होना ही है, कत्ल तो नहीं किया है, एक्सीडेंट था। इस बेचारे की जिंदगी भी इतनी ही रही होगी। हाशिम, इंशाल्लाह आज रात का सफर भी करोगे?
अब कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर ये तुर्की नहीं गए तो उनकी फैक्ट्री का पूरा माल पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा।
मोहतरमा, तुर्की माल के बारे में सोचने की जगह उस माँ बाप के बारे में सोचिए जिन्हें ये भी पता नहीं कि उनका बेटा मर चुका है।
हम बाहर इंतजार कर रहे हैं।
खुदा भी तुम्हें सही वक्त
नालो भैया, ये इंस्पेक्टर साहब के लिए है।
अरे ठीक है भाई, इंस्पेक्टर
भैया इंस्पेक्टर साहब को ले जा रहे हैं, उनके लिए ले जा रहे हैं।
तो
अरे अरे गुरु 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 गुरु,
अरे ये दो जरा हमको।
ओहो, तुम तो यार परेशान कर रहे हो।
वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया।
कोई बात,
कितने अच्छे हो।
शुक्रिया। आपका अफालबीन है?
मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है।
अरे माफ कीजिएगा।
कितने दिन से ट्रेनिंग पर हो?
18 महीने हो गए मुझे।
हाँ, तो फिर बिलाकर खत्म होने वाली है इतने दिन गायब रहने के बाद।
जी जी, कोई मेरा इंतजार भी कर रहा है।
कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है?
जी हाँ। आप कैसे पता चला आपको?
मोहब्बत तुम्हें यहाँ खींच लाई है।
आपको कैसे पता चला? मैं अपनी हथेली दिखाऊं आपको?
कोई बात नहीं,
बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए, ये बाई हथेली देखिए जरा, समीर हाथ देखिए, माफ कीजिएगा।
कोई तुम लोगों को मिलने से रुक रहा है?
जी मेरे खालू हैं।
लेकिन बिलाकर राजी हो जाएंगे?
नहीं भाई, राजी नहीं होंगे। पैसे चाहिए उन्हें, मेरे पास है नहीं पैसे।
ये देखो ना।
कहाँ?
ये है पैसे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
आज तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है।
बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी, शुक्रिया।
आज बहुत खुश हो जाओगे।
बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या कर रहे हो?
इंस्पेक्टर साहब, ये रिपोर्ट तैयार है, लीजिए।
शुक्रिया
सर, माफ कीजिएगा वो सर।
आपकी इजाजत से।
मतलब उनके घर वालों को आपके बारे में कोई खबर
नहीं? किसी को कुछ नहीं मालूम।
आपको कैसे पता चला कि फलाही साहब यहाँ हैं?
एक्सीडेंट के जाए वकुआ से सबसे करीब यही जगह थी। फलाही को ढूंढना ज़रूरी था और एक सवाल पूछना भी ज़रूरी, चूंकि आज हम दोनों को सफ़र पर जाना था।
दोनों?
उनका क्या होगा کب تک انہیں یہاں رہنا ہوگا؟
تحقیقات پوری ہونے تک انہیں رہنا پڑے گا.
کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟
آپ جانتی ہیں کہ ان کے بیوی بچے یہاں ہیں. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ فلاحی صاحب سے ناراض ہو سکتے ہیں کہ کیوں ان کی بات نہیں سنی اور تھانے چلی آئیں؟
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. جب آئی تو پتا چلا کہ وہ انڈر اریسٹ ہے, تو واپس جانے کی بھی طاقت نہیں رہی. میں نے سوچا اندر آؤں, شاید ان سے مل سکوں.
بہرحال مرحوم کے گھر والوں کو ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے, ان کے بھی کچھ حقوق ہیں. اگر صرف ایک حادثہ رہا ہو کہ یقیناً ایسا ہی ہے تو پریشانی کی بات نہیں, لیکن اگر کوئی گواہ ہوتا تو کام تیزی سے بڑھتا.
میں ہوں نا, ایکسیڈنٹ کے وقت ان کے پاس تھی. خدا گواہ ہے کہ بس ایک حادثہ تھا, اچانک وہ گاڑی کے سامنے کود پڑا.
لیکن انہیں کہا کہ وہ اکیلے تھے, اس طرح تو ان کے لیے اور بھی کام مشکل ہو جائے گا.
کیا آپ اس کی وجہ نہیں جانتی؟
جی, اس لیے کہ ان کے گھر والوں کو آپ کے بارے میں کچھ پتا نہ چلے اور آپ کو اسی طرح چھپائے رکھیں.
اپنی بیوی اور بیٹی سے ڈر رہے تھے.
ایک منٹ میں ابھی آتی ہوں.
آئیے
انسپیکٹر صاحب, تھوڑی دیر کے لیے آپ باہر آ سکتے ہیں.
کہیے, حاضر خدمت ہوں.
ایک خاتون میرے کمرے میں ہے, کہتی ہیں فلاحی صاحب کی بیوی ہیں. یہ لیں.
عجیب ہے, میں بھی سمجھ رہا تھا کہ کوئی مشکل ضرور ہے.
آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟
وہ ہم سے کوئی چیز چھپا رہے ہیں.
لیکن وہ اپنے شوہر سے ملنا چاہتی ہے.
خود خواہش کی ہے؟
جی, اسی لیے وہ تھانے آئی ہیں.
اجازت دیجیے میں ان سے مل لوں.
کیوں نہیں سر,
چلیے.
تشریف لائیں.
آئیے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم محترمہ, تشریف رکھیں.
وعلیکم السلام.
میں انسپیکٹر سیاوش شکیبہ ہوں. آپ کے شوہر کا کیس میرے ہاتھ میں ہے. کل رات ایکسیڈنٹ کے وقت میں وہاں تھا لیکن آپ کو نہیں دیکھا.
جی, میں نے عرض کیا نا, میں نے
میں یہ نہیں جانتا, جیسے ہی قانون کی بات آتی ہے تو سب سمجھتے ہیں قانون ان کی عزت کی نیلامی کرنا چاہتا ہے. انسپیکٹر صاحب آپ تو جانتی ہیں, بعض کیسوں میں ایسے ایسے ذاتی معاملات سامنے آتے ہیں کہ پولیس انہیں نظر انداز کر دیتی ہے. چونکہ ایک مسئلہ حل کر کے سینکڑوں مسئلے سب کے لیے کھڑا کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا. آپ کے شوہر کو ہم سے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے تھی, انہیں سب کچھ بتانا چاہیے تھا. بالآخر ہمارے پاس بھی عقل ہے, شعور ہے. کسی کو آپ دونوں کے پرسنل معاملات کی خبر نہیں ہوگی. اس طرح خود بھی پریشان ہوئے اور ہم کو بھی پریشان کیا.
میں تو آپ لوگوں کو پوری بات بتا چکی ہوں.
دیکھنا پڑے گا کیا کیا جا سکتا ہے. میں پوچھ سکتا ہوں کل کہاں جا رہی تھی؟
میں نے عرض کیا نا, آج رات ہمیں سفر پہ جانا ہے. سارا سامان کھین کے بنگلے میں تھا, وہی لینے جا رہے تھے.
تو دونوں جا رہے تھے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ کام کے سلسلے میں جانا تھا.
کام ہی کے سلسلے میں جانا ہے, لیکن میں بھی ان کے ساتھ جانے والی تھی. ان سے مل سکتی ہوں؟ مجھے ملنا ہوگا, ان سے مشورہ کرنا ہے.
تشریف لائیے.
آؤ چلیں.
انہوں نے سب کچھ بتا دیا فلاحی صاحب, کاش آپ نے خود ہی بتا دیا ہوتا.
یہ تم نے کیا کیا؟
وہ میں نے ان کو بتا دیا کہ میں ساتھ تھی, میں نے دیکھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. بس یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا مسئلہ گواہ کا ہونا ہے, وہ اسی لیے مجبور تھی, سب کچھ سچ سچ بتا دیا. لیکن انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے بیوی بچوں کو کچھ نہیں بتائیں گے, ہے نا انسپیکٹر صاحب؟
جی.
دیکھیے انسپیکٹر صاحب, میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جب اس مرحلے میں پہنچ جائیں تو کہیں کہ میں نے غلطی کی ہے. ہنگامے میری بیوی ہے, لیکن کچھ اور باتیں بھی ہوتی ہیں.
کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, سمجھ سکتا ہوں. लेकिन काश पहले आपने खुद बता दिया होता।
अच्छा, अब उनकी गवाही काफी है? अब मेरी बात पर यकीन आया आपको?
फिलहाल थोड़ी देर के लिए आपको तनहा छोड़ रहा हूं।
इंस्पेक्टर साहब, सॉरी, आपका ख्याल क्या है कि फलाही साहब के बेटे से कुछ बातें पूछ ली जाएं?
अच्छी बात है, मुमकिन है कोई नई बात सामने आ जाए।
जरूर, चलती हूँ सर।
शुक्रिया।
एक मिनट प्लीज।
मैं?
आप नहीं, आपकी बेटी।
जी?
सॉरी डियर, अम्मी को डिस्टर्ब नहीं किया कि मुमकिन है कहीं वो परेशान हो जाएं।
मैं आपकी खिदमत में हूँ।
अगर कोई गवाह मिल जाता तो तुम्हारे बाबा की मदद की जा सकती थी, और वो भी अगर कोई शाहिद मिल जाए तो बहुत बेहतर रहता।
तो ये सवाल बाबा से पूछ लें।
मैंने सोचा मुमकिन है कि कुछ वजूहात की बिना पर वो हमसे ना बताना चाहें।
कैसी वजूहात, क्या छुपाना चाहेंगे?
नहीं मालूम, मैंने कहा मुमकिन है।
आप मुझसे पुरसुजू कर रही हैं?
ओह नो डियर, मैं एडवाइजर हूँ, इस केस में मदद करना चाहती हूँ।
ये बात आप लोगों के लिए सही कही जाती है। आपकी नज़र में सब मुजरिम हैं या ये कि कोई सबूत हो?
नहीं डियर, हम कहते हैं सब बेकसूर हैं मगर उसके खिलाफ कोई सबूत हो। जाओ बेटी, जा सकती हो।
एक मिनट के लिए तो मैं डर गया था।
जब सुना आपकी मुश्किल गवाह के जरिए हल हो सकती है तो कोई चारा नहीं था मेरे पास।
महनाज और समाना यहाँ है, अगर तुम्हें देख लिया तो क्या हो सकता है?
हाँ, लेकिन ऐसे मौके पर ये सब चीजें कौन सोचता है?
लेकिन तुमको सोचना चाहिए, वो तुम्हें पहचानते हैं, उन्हें पता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी थी। नहीं सोचेंगे यहाँ क्या कर रही हो?
अब उन्होंने देखा तो नहीं ना, शायद इस तरह से आपकी मुश्किल भी हल हो जाए।
अब जब सब हो जाए तो जाने के वक्त ध्यान देना।
हाशिम, लेकिन खुदा के वास्ते अपनी जिद छोड़ दे।
फिर शुरू हो गई तुम? हिंगा में हम पहले बात कर चुके हैं, हमें इस बच्चे की जरूरत नहीं।
आप किससे डर रहे हैं? घर वालों को इसकी खबर नहीं होगी।
मुझे तो पता है ना, हिंगा में मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, समझ रही हो?
खुदा के लिए हाशिम,
बच्चे की जिम्मेदारी होगी, परेशानियां हैं, मैं तो उसे यूं ही खुदा के हवाले नहीं कर सकता।
इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी, आपको महनाज की कसम है।
मुझे तुमसे बच्चा नहीं चाहिए, हम पहले तय कर चुके थे।
आपका दिल कैसे मानता है हाशिम, गुनाह होगा।
ऐसी बात कर रही हो कि जैसे मैं किसी की जान लेना चाहता हूँ।
क्या फर्क पड़ता है, ये भी तो एक जान है ना।
बस करो हिंगामा, गाड़ी की लड़ाई कम थी जिसके चक्कर में किसी की जान ले ली, बस करो।
अरे आप ही ने तो बिला वजह हंगामा खड़ा कर दिया था, हमको बहस करने की जरूरत ही नहीं थी।
जाओ हिंगामा, मैं अपनी आखिरी बात कह चुका हूँ, यहाँ से फुर्सत मिल जाए तो जाकर फैसला करना पड़ेगा, डॉक्टर से मिल चुका हूँ।
मैं इस बच्चे की जान नहीं लूंगी।
तुम्हारी ये हिम्मत, तुमसे क्या मतलब?
आपसे भी कोई मतलब नहीं।
फिलहाल यहां से चली जाओ।
कम से कम बंगले की चाबी मुझे दे दें, मेरी पूरी जिंदगी, पैसे, कागजात सब वही हैं।
पासपोर्ट और टिकट भी वही है ना?
परेशान ना हो हाशिम, इस बच्चे से आपके लिए कोई मसला खड़ा नहीं होगा।
मुझे तुमसे बच्चा नहीं चाहिए, समझ गई?
हाशिम, ये बच्चा मेरी पूरी जिंदगी है।
वो बच्चा जो किसी की जिंदगी का बैलेंस खराब कर दे, मुझे नहीं चाहिए।
सिर्फ अपनी जिंदगी के बैलेंस के बारे में सोच रहे हैं, और मेरी जिंदगी का बैलेंस?
तुम्हारी जिंदगी का बैलेंस वो बच्चा है?
मेरे पास इस दुनिया में कुछ नहीं है हाशिम, मेरा सहारा सिर्फ ये बच्चा है।